السلام عليكم. Hello and good morning. صباح الخير, خوش آمدید, and welcome back to the Dasudar Tareen Show in Pakistan, jiska naam hota hai Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Salmeen Ansari, mera naam aur main aapki khidmat mein hazir janab, present boss. 26 तारीख है आज मई की, इज द 26th ऑफ मे, फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है, तो जुमा मुबारक टू ऑल दोज पीपल हु ऑब्जर्व इट. आई होप यू डूइंग वेरी वेल व्हेयरएवर यू आर, हूएवर यू आर, और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. आई डोंट नो मेरी आवाज से कितना ऑब्वियस हो रहा है, बट टुडे आई एम जस्ट सो सो एग्जॉस्टेड. Now exhausted physically तो है, but emotionally आपकी body जो है ना उसको एक भारीपन फील होने लगता है जब इस तरह का सख्त वक्त आता है. मुल्क पे भी सख्त वक्त आया हुआ है. मेरे घर की कहानी आप लोगों को पता ही है कि अम्मी की तबीयत जिस तरह चल रही है, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत एहसान है. कल कुछ अच्छे घंटे अम्मी के देखने को हमें मिले, बट अगैन वो सिर्फ कुछ ही घंटे थे. सो कल मैंने ऊपर से ये किया कि मैं बिकॉज अपने दिमाग को क्लियर करना चाह रही थी और मौसम बहुत खुशगवार था, तो मैंने बाहर एक होता है यू नो स्ट्रोलिंग, हल्का फुल्का आप चल लेते, एक होता है ब्रिस्क वॉक, यू नो लाइक एक्सरसाइज फॉर्म में, वो मैंने कल पता नहीं क्यों तैयार किया कि करने की जरूरत है, शायद मैं बिल्कुल अपना ध्यान बटाना चाह रही थी. तो अपनी गली में मैं 5 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं 30 मिनट चलती रही हूँ ऊपर नीचे, और जितना मैं वॉक करती हूँ उससे काफी ज्यादा. तो खैर नो रिग्रेट्स, बट आई थिंक वो उसका फायदा ये हुआ कि मैं सो सकी इसके बावजूद कि रात को इतना आंधी तूफान था, और यूजुअली आंधी तूफान में मेरी आंख लगती नहीं है, यानी सो नहीं पाती हूँ इतना मैं, लेकिन सो पाई. लेकिन उसका नेगेटिव ये है कि वो ऑब्वियसली फिजिकली मैं चूंकि कॉन्स्टेंटली हर आधे घंटे पे अम्मी के साथ कुछ, अम्मी के लिए कुछ करना पड़ता है, तो वो फिजिकली बॉडी वैसे ही टायर्ड है. सो इफ आई साउंड टायर्ड, डोंट थिंक दैट आई एम डाइंग, आई एम ओके, अल्लाह माफ करे, आई एम ओके, जस्ट वेरी 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 एग्जॉस्टेड मेंटली ऑल्सो, यू नो बहुत सारी चीजें जो है वो अब मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, जो कि पहले भी की है, लेकिन बहुत अरसा हो गया था कि ऐसे, अल्लाह का एहसान रहा है कि इस तरह की सिचुएशन बहुत अरसे से अम्मी की नहीं आई थी. सो एनी हाउ, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, द कंट्री एंड द सिचुएशन इज द सेम, इट सीम्स टू बी गेटिंग वर्स, लेकिन वर्स्ट का वर्स क्या हो सकता है पॉसिबली. सो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, लेकिन हाँ हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जो भी हो रहा है सालमियत बरकरार रहे हमारे मुल्क के, जो भी बची कुची है. हम दुआ करेंगे कि ये जो भी हो रहा है, जो कि हर चीज़ एक मकसद से होती है और वजह से होती है, और इंसान बस कितना ही कुछ समझ सकता है, हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे. बट द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, कुछ मुल्क से इंस्पायर्ड है, कुछ वैसे भी जिंदगी से, और वो ये है कि कभी कभी आपको कोई बैटल, जंग जिसे कहते हैं ना, या सिचुएशन, कोई भी मामला, ठीक है, उसको जीतने के लिए कभी कभी ज़रूरी होता है, अहम होता है कि इंसान रिट्रीट करे, पीछे हट जाए. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, क्या आपका बीच का कोई जवाब है, आई वुड लव टू नो. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, अगेन सवाल दोहराई देती हूँ कि कभी कभार एक मामले को जीतने के लिए या सुरखरू होने के लिए, या जंग की हालत हो या जिंदगी का कोई भी मामला हो, उसको आपने बेहतर तरीके से अगर पाना है तो जरूरी होता है कभी कभी पीछे हट जाना, अहम होता है. अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो वो भी थोड़ा इलैबोरेट करके बताइएगा, अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो वो भी अपनी वजह बताइएगा, अगर आपका बीच का कोई जवाब है वो भी बताइएगा, क्योंकि ना जवाब अगर आया कुछ लोगों का तो आई डोंट यू नो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि कुछ लोगों को कभी कभी लगता है कि इंसान को डटे रहना चाहिए, पीछे हट जाए तो दूसरे को एडवांटेज मिल जाता है, व्हाटएवर इट इज, डू लेट मी नो. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, थोड़ा मुश्किल है पता करना, बिकॉज फिलहाल के लिए हमारे दफ्तर में इंटरनेट नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, तो बमुश्किल फंस फंस के मेरे फोन पे मैं डेटा देख रही हूँ, सिस्टम जो है उसको देखते हैं किस तरह वाइव करते हैं. व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, GHQ रावलपिंडी, मलिका बुखारी, खतीजा शाह, फजाइया मेडिकल कॉलेज, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, आई हैव नो आइडिया. अदर देन बड़ा पेनफुल था थोड़ा सा, मैंने क्लिप देखा था मलिका की, मलिका साहिबा की का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन व्हेन शी वॉज टॉकिंग, यू नो, एंड इट वॉज वेरी वेरी एविडेंट. उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ पाइनएप्पल गॉर्जस, ये तीन चीजें खट्टे पता नहीं क्यों तले ऊपर जो है वो ट्रेंड कर रही हैं ट्विटर पे. उसके अलावा इमरान रियाज हुज बीन मिसिंग फॉर 2 weeks नाउ एटलीस्ट. नसीम इज ट्रेंडिंग सऊदी अरेबिया. बाबर आजम एंड लम्स. बाबर आजम शायद इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं बिकॉज वो कल मौजूद थे जो शहदा के लिए एक तकरीब मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो मुनद की गई थी वहां पे वो मौजूद है. आई थिंक शायद इस वजह से इज ट्रेंडिंग. और क्या हो रहा है जी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, टेक स्पेस में, सारी चीजें निकालने की कोशिश करती हूँ. थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा. विल हेड टूवर्ड सम मौसीकी और वापस आती हूँ इसके बाद. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कभी कभी जीतने के लिए कुछ, या जीतना भी लफ्ज शायद मुनासिब नहीं होगा, कभी कभी सुरखरू होने के लिए या बेहतर नतायज पाने के लिए जरूरी होता है कि कोई भी मामला हो जिसका आपको सामना करना पड़ रहा हो, वो जंग की हालत हो या आपके अंदर की जंग की कोई चल रही हो, आपके दिमागी या जज्बाती तौर पे वो काम से रिलेटेड हो या जाती जिंदगी निजी जिंदगी की कोई स्टोरी हो, कभी कभी जरूरी होता है कि इंसान रिट्रीट करे, यानी कि पीछे हट जाए थोड़ी देर के लिए. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, कि आप इस बात से इत्तफाक करते हैं, इत्तफाक नहीं करते हैं. जो भी आपका जवाब है, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN, टू विन अ बैटल और अ सिचुएशन और अ कंडीशन. समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू रिट्रीट. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को, यस नो मे बी जो भी है, तफसीली तौर पर जवाब लिखिएगा और हैशटैग कीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. थैंक यू फॉर टू द पीपल हु ऑलरेडी आंसर, कीप दोस आंसर्स कमिंग इन. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एज आई सेड के ऑफिस में चूंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है फोन पे, मतलब मल्टीपल चीजें मैं खोलने की कोशिश तो कर ही रही हूँ. एशिया कप, ACC एक्सेप्ट सेठीज हाइब्रिड मॉडल. अच्छा जी, यहाँ कहा गया था कि IPL का जो कोई फाइनल मैच चल रहा था या समथिंग, उसमें जो है वो डिसाइड किया जाएगा समथिंग ऑफ द सॉर्ट. सो द एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज एक्सेप्टेड नजम सेठी हाइब्रिड मॉडल टू होस्ट सितंबर्स एशिया कप इन पाकिस्तान एंड पार्ट ऑफ इट एट अ न्यूट्रल वेन्यू. अब वो न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, पार्टली यहां होगा, पार्टली कहीं और होगा, वो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंटेड टू द ACC बाय नजम सेठी साहब, पाकिस्तान विल होस्ट 4-6 मैचेस एशिया कप के. 4-6 मैचेस जो है वो यहां होंगे और बकिया मैचेस फिर देखते हैं कि कहां होंगे. फिलहाल के लिए ये तजवीज एक्सेप्ट की गई है, आगे देखते हैं क्या होता है. पावरफुल विंडस्टॉर्म डिस्टर्ब्स ISCO पावर डिस्ट्रीब्यूशन कल. अब ये पावरफुल विंडस्टॉर्म इसको क्यों कह रहे हैं, ये तो इस्लामाबाद का बड़ा नॉर्मल है. ये इवन 5-6 दिन पहले हुआ था, फ्राइडे या सैटरडे को, कि फ्राइडे को आई थिंक कि विंडस्टॉर्म ठीक है था, उस तरह का नहीं था. वी हैव सीन अ लॉट वर्स इन इस्लामाबाद. कल तो फिर भी उससे ज्यादा स्ट्रांग था. सो जी ISCO पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामाबाद में डिसरप्ट हो गई थी कल, बिकॉज हवा काफी देर से चल रही थी शाम को, और जिस तरह का गस्ट ऑफ विंड और डस्ट था वो अभी भी चल रहा है. ठीक है, यानी कि वो उसने शिद्दत इख्तियार की थी रात को, फिर बिजली बहुत जोर से हमें आवाज आ रही थी, गरज चमक काफी हुई थी, फिर बारिश भी हुई थी और हवा नहीं रुकी थी. दैट इज द थिंग, हवा कंटिन्यू, तो शायद इस वजह से. सो बहुत सारे इलाकों में फॉल्ट्स और ट्रिपिंग हुई है फीडर लाइंस वगैरह पे, और पावर वायर्स वर ऑब्स्ट्रक्टेड, बोर्ड्स गिर गए थे, ट्रीज गिर गए थे. इस्लामाबाद में ये भी होता है, जहां लोग कहते हैं कितना खूबसूरत इस्लामाबाद है और इतने दरख्त हैं, वहां पे जब भी आंधी तूफान आता है दरख्त जो है बड़े वो अक्सर गिर जाते हैं. और क्या हो रहा है जी दुनिया में. आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, हियर आर 5 थिंग्स आई वुड नेवर डू विद माय किड. दिस सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इसको भी शेयर करती हूँ. लाइट्स आउट एक नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम है विच इज मेकिंग अ लॉट ऑफ वेव्स. इट्स अ हॉरर सीरीज आई बिलीव. सो आई डोंट वॉच हॉरर प्रोग्राम्स और फिल्म्स, सो आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक. बट या मैंने ट्विटर पे भी देखा, बहुत सारे लोग इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं. पीपल कन्विंस टाइम ट्रैवल इज रियल एज नाइकी शूज स्पॉटेड इन 400-year-old पेंटिंग. हैं क्या मतलब है. हाउ टू मेक पोटेटो नॉची. नॉची कहते हैं ना इसको, गनोची जिसको लिखते हैं, तो जो काइंड ऑफ पास्ता होता है, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ पास्ता. नो रोड इंट्रोड्यूसेस द पॉड माइक USB माइक्रोफोन फॉर पॉडकास्टर्स एंड स्ट्रीमर्स. उसके अलावा SC रिज्यूम्स हियरिंग ECP's रिव्यू पिटिशन ऑन पंजाब इलेक्शंस. ये कल हुआ था, उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग हेडलाइन सामने देखने को मिली थी. UN राइट्स चीफ अपोजेस मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ May 9th वैंडल्स. इमरान इनकी एड्स प्लान्ड May 9 राइट्स. जियो फेंसिंग रिवील्स. Rahab Riaz gives his two cents on the Asia Cup. Has government announced public holiday on May 25th? ये दो दिन पहले की खबर थी. Public holiday नहीं थी, अगर थी तो उसको वापस ले लिया गया था. So quite a few things to share with you. Keep your answers coming in. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कभी भी कोई मामला ऐसा हो जिसमें आपको लग रहा हो कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, फतेह आपकी नहीं, जीत आपकी नहीं है, या जिस तरह के नतायज आपके लिए या सिचुएशन के लिए फायदेमंद बेहतर हो सकते हैं, यानी फायदेमंद हो सकते हैं, बेहतर साबित हो सकते हैं, वो नहीं जो है वो आप पा रहे हैं. एंड ऑल्सो खास तौर पे अगर जंग की स्टेट हो, वो जंग लड़ाई हो सकती है किसी के साथ, किसी खानदान के साथ हो सकती है, कोई केस हो सकता है, कोई पर्सनल मामला हो सकता है, या जंग जिसको हम लिटरल सेंस में जंग कहते हैं वो हो सकता है, एनीथिंग एट ऑल, ये सब चीजों पे एप्लीकेबल है. तो उस सिचुएशन में आपको मुझे लगता है कि आपको रिट्रीट करना चाहिए, यानी कि पीछे हट जाना चाहिए. वो पीछे क्यों हट जाना चाहिए, इसकी दो तीन जो है वो काफी कॉमन किस्म की वजूहात हैं. इसकी क्या स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी है, उसके बारे में 10:30 के करीब हम डिस्कस करेंगे. लेकिन आपका जवाब मैं जानना चाहती हूँ. येस नो मे बी डू यू थिंक टू विन अ बैटल ऑफ सिचुएशन समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू रिट्रीट. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. बदहाली की भी बदहाली जो है अगर कोई हो सकती है, यानी हम कहते हैं ना, the father of the father. That's the kind of situation that we're facing right now. We can't pat ourselves on the back. Sorry, we can't pat ourselves on the back because we didn't default. इसमें कोई अपने आप को थपकने की बात नहीं है. वाह 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 वाह, हम डिफॉल्ट नहीं किए. अरे भाई, ये कोई अचीवमेंट नहीं है अगर इंसान डिफॉल्ट ना करे तो. दिस इज द बेयर मिनिमम ना, ये तो बुनियादी चीज है जो कि होनी नहीं चाहिए. इवन अगर आपका मुल्क अंडर सच अ बैड इकोनॉमिकल क्राइसिस है एंड हैज गॉन थ्रू सच इकोनॉमिकल टर्मोइल बिकॉज ऑफ डेट एंड लोन्स एंड बैड गवर्नेंस एंड बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग ईच अदर, टेलिंग ईच अदर के तुमने इकोनॉमी को जो है वो सड़ा दिया है. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है बाय द वे. इकोनॉमिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे ममालिक में यही होता है. दैट यू काइंड व्हाट यू मे कॉल इट, पुट इट ऑन ईच अदर, दैट ये जो सिचुएशन है वो इसलिए खराब हुई है बिकॉज पिछला बंदा जो था इन पावर वो इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर सका. और कभी इकोनॉमिकली कोई चीज प्रोग्रेस करती है तो आप दो तीन ममालिक का ही एग्जांपल ले लीजिए जिन्होंने, और ये बड़े मशहूर ममालिक हैं, बड़े जाने माने हैं, उसमें एक आधी सुपर पावर भी है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद सोचिए, जिनके ऐसे सरबरा जो कि अच्छा काम कर रहे थे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर जाती नौयत की कोई तोहमत लगा देना या उनको ऐसी सिचुएशन में डाल देना जो कि जंग से रिलेटेड हो, यानी कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव एंड सुपीरियर जब एक मुल्क बनने लगता है, वो मुल्क सुपर पावर रहा हो या डेवलपिंग कंट्रीज के शुमार में आता हो लाइक पाकिस्तान, जब चीजें एक अच्छा रुख इख्तियार करती हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या और चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लोगों को कम अज कम लग रहा हो कि इकोनॉमिकली चीजें स्टेबलाइज कर रही हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं. तो अगर वो तो देन देयर इज ऑलवेज दीज कोट अनकोट सुपीरियर पावर्स जो कि उस शख्स को नीचे लाने की कोशिश करती हैं. चले मैं आपको एक नाम दे देती हूँ, बिल क्लिंटन. व्हाट हैपेंड विद बिल क्लिंटन, द पॉसिबली द लोएस्ट ऑफ व्हाट दे कुड डू टू हिम, they did. And as much as we hate Donald Trump, very similar. Coincidence nahi hai. Achha, kirdar ke hisab se Allah Taala behtar khair janta hai. Courts behtar jante hain ki kya hua hai aur kya nahi hai. There is no comparison between the personalities and the character of the two people. But what was one thing common between the two people? That was their focus was more so with Donald Trump was क्लिंटन का तो खैर नहीं क्वालिफाई करता है बिकॉज उसके दौर में भी हो चुका है. इन टर्म्स ऑफ इन्वेजन नहीं करनी और अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना, और डोनाल्ड ट्रंप का तो था कि बिल्कुल ही कहीं इन्वेजन नहीं करनी और बस अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना. तो किरदार कशी लोग करने लगते हैं. अब किरदार कशी काम नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ यू नो वुमेन एसोसिएशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो ऐसा पर्सनल अटैक करते हैं जो कि शायद हम यहाँ पे भी देख रहे हैं खानदान ह्यूमैनिटी के जितने जुमरे होते हैं उनको पार कर देते हैं. सो वी सीइंग दैट इन पाकिस्तान आल्सो. आप अपनी फैमिली में देख लीजिए, आप अपने साथ देख लीजिए, आप किसी दफ्तर में देख लीजिए. बहुत कामयाब शख्स जब किसी के लिए थ्रेट बन जाता है, वो थ्रेट इसलिए भी बन सकता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, अच्छा काम करता है, उसकी शाबाशी हो रही होती है, उसकी वाह वाह होती है, कंपनी भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है. कभी कभी इसलिए थ्रेट बनता है बिकॉज वो शख्स अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन वो शख्स बहुत रिजिड हो जाता है लीडरशिप के बजाय, थोड़ा सा डिक्टेटोरियल हो जाता है लीडर, बिकॉज डिक्टेट नहीं करता है, लीडर हमेशा साथ लेके चलता है. इन दोनों सिचुएशंस में, यानी कि उसका काम अच्छा होता है, लोगों को फायदा पहुंच रहा होता है, और उसका एक अच्छा यू नो क्या कहते हैं कॉमराडरी वाली अप्रोच होती है, या नहीं भी कॉमराडरी वाली अप्रोच होती है, यानी लोगों को नहीं साथ लेके चल रहा होता और फिर भी कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहा होता है. दोनों चीजें जब किसी भी छोटा सा ग्रो चाहिए होता है लोगों का, हमेशा जो थ्रेट बन जाती है वो क्या करते हैं उस शख्स के साथ. खवातीन के साथ तो बहुत ही कॉमन है ये, वो किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर, और कुछ मिलता नहीं है ना, दिमाग इतना छोटा होता है गिट्टों में चला जाता है. और अफसोस मुझे हमेशा इसलिए होता है क्योंकि इंसान तो तमाम अशरफुल मखलूकात है ना, एवरी पर्सन इज अशरफुल मखलूकात, द ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिएशन ऑन दिस अर्थ. और इंसान अपने आप को जो अल्लाह ताला का वादा है वो एक लम्हे में अपनी इनसिक्योरिटी ऐसी आने देता है, इतना थ्रेटन फील करता है, इतना वाइल हो जाता है अंदर, कि किसी भी शख्स की कॉन्ट्रीब्यूशन को इतना बड़ा थ्रेट समझ लेता है कि वो इस हद तक गिर जाता है कि वो अपनी सारी अच्छाई भी छोड़ देता है, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को हावी होने देता है, कंपनी का भी या खानदान का भी फायदा नुकसान हो जाता है, या यू नो मुल्क की बात करें तो मुल्क का भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज दे कांट फाइंड एनीथिंग एल्स. तो कैरेक्टर असैसिनेशन या वुमेन एसोसिएशन से होती है, या चीटिंग किसी भी किस्म की उससे होती है, या पैसों से रिलेटेड होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स हार्ड टू यू नो बिलीव कि लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप हमारे मुल्क का तमाशा देख लीजिए, उससे ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि पावर एंड प्रोविस जो है ना कितनी गंदी चीज है. ग्रीड जो है वो समझिए एक उसका एक फ्यूल होता है, लालच जो होती है ना वो एक फ्यूल होती है, ईगो उसकी आईवी होती है. आईवी नहीं लगती जब अस्पताल हम जाते हैं, और फिर वो किसी हद तक भी लोग चले जाते हैं. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो हम बात कर रहे हैं कि आप इस बात से इत्तफाक करते हैं, इत्तफाक नहीं करते हैं, या आपका बीच का कोई जवाब है कि जब हालात या मामलात कोई भी बुरे हो जाएं, जिसमें हार नजर आ रही हो या जीत सामने ना नजर आ रही हो, वो जंग की स्टेट हो या जाती निजी जिंदगी में आपके हो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो कभी कभी पीछे हट जाना ज्यादा अकलमंदी का फैसला होता है. यस नो मे बी हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आई बी बैक शॉर्टली, स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक, दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी, मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. वन हैज टू लर्न टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर रिसोर्सेज वन हैज, यानी जो भी इंसान के पास वसाइल होते हैं उसको इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करने में तो मजा भी और है. नए नए नित नए जैसे कहते हैं, यू नो उसके हल या उसके सॉल्यूशंस या उसके तरीके, जो भी आपके पास वसाइल होते हैं इस्तेमाल करने का, एक और ही आर्ट है, एक और ही मजा भी है और बहुत सारा फायदा भी है. बहुत सारा फायदा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि एक ही मकसद होता है किसी एक शख्स का, चीज का, वसीले का, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसमें हम इतने डिपेंडेंट होते हैं, तो इंटरनेट अगर नहीं होता है तो इंसान क्या कर सकता है. इंसान बैठ के सोच के अच्छा कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी हैं, जो मेरी नजर से गुजरी हैं, जो आम जिंदगी में हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में बात कर सकता है, काम कर सकता है, आइडियाज राइट डाउन कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इंटरनेट की बंदिश जहां तंगी बहुत यू नो होती है इंसान को, लेकिन बिकॉज हमारा काम भी डिपेंडेंट होता है और सोशली आई थिंक ज्यादा डिपेंडेंट होता है. VPN और नो VPN, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अभी जैसा हमारे दफ्तर में नहीं चल रहा है और कुछ इशू चल रहा है, बट और मेरा डेटा चल रहा है, बट डेटा बीच में नहीं भी चल रहा था. सो द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सम आर थिंग्स दैट आई हैव एक्सेस टू, सम आर थिंग्स व्हिच आई डोंट हैव एक्सेस टू. इंसान को अपने ऊपर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंसान को अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए और अपने दिमाग को इतना यू नो स्ट्रांग वसीला समझना चाहिए कि उससे हल, नतायज, सोल्यूशंस, आइडियाज निकल सकते हैं हर एक के. अपने ऊपर भरोसा करने वाले लोगों में और दूसरों से हसद करने वाले लोगों में फर्क ही ये है कि लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपनी तवज्जे को नहीं उतना बटने देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेके आते हैं. ये सब और जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर जाहिर सी तो नहीं बात है, लेकिन उसके बाद नतीजे के तौर पे वो एक डिसिप्लिनरी तरीके से, चूंकि वो एक आदत बना लेते हैं फोकस करने की चीजों पे, तो उसके बाद वो एक सेकंड इसको आहिस्ता कर देती हूँ मैं, उसके बाद वो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं ढंग की चीजों में. दूसरे लोग जो थ्रेटेंड फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, उनकी पूरी हिस्ट्री होती है कि उनको बचपन में शायद बताया गया होगा कि यू आर नॉट गुड इनफ, या उन्होंने जिंदगी में एक आध सिचुएशंस ऐसी देखी होंगी जिसमें उनको लगता होगा कि लोग उनसे छीन लेते हैं. भाई कोई कुछ किसी से छीनता नहीं है. अगर आपको बुरा बस लग रहा होता है कि किसी और को तवज्जो मिल रही है, मैंने भी तो काम किया, उसको क्यों अटेंशन मिल रही है, तो प्रॉब्लम आपके साथ है, उसके साथ नहीं है. ये अपने आप को ये साफ साफ बता दीजिए, यू नो सॉरी टू बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज, प्रॉब्लम इज विथ यू. आपका कभी भी हसद जस्टिफाइड नहीं हो सकता. ऐसी सिचुएशन अक्सर ऐसी ऐसी दुश्मनियों को जन्म पैदा करती है जो कि बिल्कुल अननीडेड होती है. यानी आप दफातर में ये बड़ी कॉमन चीज़ है, अब तो कम हो गई है, लेकिन अभी भी जहाँ पे थोड़ा सा डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, जहाँ पे एचआर को तरजीह नहीं दी जाती, एचआर डिपार्टमेंट की से मैं बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्स को, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, यानी कि कोई कंपनी है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इफ इट्स जस्ट अ कंपनी, गवर्नमेंट सेटअप में ही हमें बड़ा कॉमन देखने को मिलता है. फ्यूडल सिस्टम चूंकि हमारे मुल्क में काफ़ी प्रिवेल करता रहा है बड़े अरसे से, उसका इन्फ्लुएंस कॉलोनियलिज्म एंड का इन्फ्लुएंस जो है, यानी अंग्रेजों का कि हम सुपीरियर हैं तुम इन्फीरियर हो, वो एक कॉन्सेप्ट किसी ना किसी पहलू से लोग अपने अंदर डाल देते हैं, ठीक है, लेके चलते हैं वो आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो जब उनको कमतर महसूस करवाया जाता है, उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, या वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता करके रीबिल्ड करें और कभी किसी को यू नो ना बताने दें कि तुम कमतर हो, या दूसरा उनके पास होता है कि वो उस नेगेटिविटी में आके वो सारा नेगेटिविटी और गुस्सा जो किसी और के ऊपर निकाल देते हैं. आप क्या समझते हैं ये जो विशस साइकिल चल रहा है पॉलिटिक्स का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन डायनेस्टियल पॉलिटिक्स जो चल रही है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं इन लोगों को क्या बताया गया कि तुम सुपीरियर हो? और क्या बताया गया कि चले सारे पॉलिटिशियंस को हम एक ही थाली में डाल देते हैं, ठीक है, पीडीएम की तमाम जमातें, जेयूआई, पीपीपी, पीएमएलएन, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, बहुत सारे हैं ना, एंड पीटीआई ऑल्सो. पीटीआई में खैर डायनेस्टल पॉलिटिक्स बेयर मिनिमम है, लेकिन वहां पे भी हैं, वी हैड अ कपल ऑफ पीपल जिनकी औलादें भी जो है वो दे यू नो दे वर पार्ट ऑफ द रेस एंड दे वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द इलेक्शंस अगर होते हैं अभी पंजाब में एक्सेट्रा. क्या प्रॉब्लम क्या है? दे स्टार्ट फीलिंग दे आर मोर सुपीरियर. वाई डू दे फील दैट? बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड दैट. Either you start feeling you are more superior, तब भी आप दूसरों को जो है suppress करेंगे, या जो शख्स suppress हो रहा है उसके पास as I said दो choices होती हैं, कि वो या दबता चला जाए, या वो जो दबाने की कोशिश कर रहा है उसको दिमागी तौर पे ना अपने आप को ब्रेन वॉश होने दे. वो कह रहा है अच्छा ठीक है तुम superior समझना चाहते हो अपने आप को, it's okay. You can win that battle. And मैं ये बात इतने you know casual तरीके से कर रही हूँ, लेकिन this is such a fundamental in the way a society grows, where आपका जिंदगी का या आपकी you know governance का मकसद is to prove other people wrong, you end up being a country like Pakistan, where the governance is not built upon proving the other party wrong. गलत कोई करता है उसको point out करना और बात होती है, लेकिन इनकी तो बिहेवियर थेरेपी की अशद जरूरत है तमाम लोगों को, क्योंकि इतना आवाम का पैसा, टैक्स जो हम देते हैं वो खर्च हो रहा है हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, हर दूसरे दिन किसी इवेंट पे जिसमें आके वो बात करते हैं कि एक ऑपोजिशन जो कि ऑपोजिशन भी अब नहीं है वो कितनी गलत है. ठीक है, ओके, गलत है, फर्ज करें गलत है, यू आर डिफॉल्टिंग बट यू हैव इनफ मनी टू डू ऑल ऑफ दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो आपकी ईगो कितनी कोई हर्ट हुई हुई है, या आप इतने ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि यू थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज यू डोंट रियली केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द यू नो कंट्री. द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज लाइक दिस इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इज दैट, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की हिस्ट्री अलग है, वहां के डायनामिक्स अलग है, आई अंडरस्टैंड दैट, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. बट आई फील रियली सॉरी. और याद है मैंने एक दफा से ज्यादा ये बात की है कि तरस जब आप किसी के लिए खा लें ना, नफरत से भी ज्यादा ये एक नुकसानदेह एक इमोशन होता है. तरस खाते हैं, एटलीस्ट मैं तो खाती हूँ, ऐसे लोगों के लिए किसी भी इदारे में, खानदान में या गवर्नमेंट में, जो कि अपने आप को साबित करने के लिए कॉन्स्टेंटली किसी को नीचा दिखा रहे होते हैं. और वक्त उसमें ज्यादा सर किसी को गलत साबित करना या गलत उसके काम को दुरुस्त करने के लिए पॉइंट आउट करना, जी ये गलत था वो सही है, ये एक और चीज होती है. किसी को नीचा दिखाने के लिए कॉन्स्टेंटली उसमें अपनी एनर्जी सारी डालना, वही एनर्जी जो कि काबिलियत आप रख सकते हैं कि वही तवानाई आप किसी अच्छी चीज में डालें, एक तो आपका अपना ही पर्दा इंसान का फाश हो जाता है कि लोगों की उनको परवाह नहीं. इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी किसी खानदान में, किसी कम्युनिटी में, किसी इदारे में, ठीक है, अगर लोगों की परवाह होती तो आपके पास एक, फर्ज करें कि 1 से 10 तक एनर्जी लेवल है, ठीक है, 10 तक आपके पास एनर्जी लेवल है. अगर आप 8 तक जितनी एनर्जी आपकी जितनी तवानाई लगती है वो उसको आप टाइम में क्या कहते हैं मेजर कर लीजिए, ठीक है, नाप लीजिए कि 8 तक जितनी एनर्जी लगती है और 24 घंटे आपके पास दिन में होते हैं तो आप 22 घंटे गुजार रहे हैं ये साबित करने के लिए, नॉट कि किसी और ने गलत क्या किया और आप सही क्या कर सकते हैं या क्या करने की जरूरत है. किसी को ये बताने के लिए हर एक को इर्द गिर्द जो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि जो बाकी था वो गलत था और वो गलत इसलिए था और वो गलत यूं था और वो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट स्पेंडिंग एनर्जी ऑन दैट, नॉट कि अच्छा गलत, हम सब ये करते हैं, हम सब किसी और को गलत, यू नो, अपने आप को बेहतर या सोल्यूशन के तौर पे सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये जिंदगी का निजाम है, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं, दे थिंक दे आर राइट एंड दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर 24 में से 22 घंटे एनर्जी लेवल 10 में से 8 जो है वो कॉन्स्टेंटली सर्फ हो रहा हो सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए, भले और ज्यादा नुकसान हो रहा और लोगों का अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की वजह से, तो सिर्फ तरस वर्दी ऐसे फिर लोग होते हैं. एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स. आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो आप खुद एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदार हैं. थेरेपी में, साइकोथेरेपी में ये चीज सिखाई जाती है, ठीक है, आप अगर थेरेपी देते हैं या रिसीव करते हैं, आपको इस चीज से इनकाउंटर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो मैं आपको बता रही हूं क्योंकि मैं दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन पे रह चुकी हूं, देते हुए भी और रिसीव करते हुए भी, कि आप एट द एंड ऑफ द डे खुद जिम्मेदार है. आपके पास कोई जवाब नहीं है कभी भी किसी शख्स के साथ कि चूंकि उसकी जिंदगी में बहुत बुरा हुआ है, ये फंडामेंटल है साइकोथेरेपी का, दैट यू स्टार्ट hurting other people. Never. You don't have an excuse. Absolutely not. We're headed to a commercial break. Wapas aate hain iske baad. Stay tuned. What a nice song. It's, can somebody translate this for me? Iska matlab mujhe jo hai wo as such samajh nahi aaya. Lekin gaane ki composition bahut pasand thi. That was the Chakwal group and Misha Shafi. And the name of the song is Ishq Aap Aap Bhi Awalla. आप भी के बजाय आपे नहीं होना चाहिए. That's what I was hearing. Anyhow, it's a very very nice song. किसी को इसे का मतलब अगर समझ आता हो तो जरूर बताइएगा. अच्छा जी, what else is happening around the world? We're having a look at world news. Thunderstorms to continue on and off in Islamabad. Islamabad और उसके गिर्दो नवाह में पिछले as I said earlier in the day, earlier in the during the show at the beginning ke aaj thoda sa jo hai na wo level of exhaustion mentally and emotionally and physically zyada hai. Anyhow, agle 4-5 din mein garmi ki shiddat rahegi, lekin jo zyada kafi zyada ho gayi thi 37 38 39 40 tak experience, I think 41 tak bhi experience kiya tha humne, usme काफी वाजी कमी आई है. यानी कि गर्मी ऐसी नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन 34-35 तक टेम्परेचर जाएगा एक आध दिन, लेकिन लोअर एंड पे 19-20-21-22 इस तरह एक्सपेक्टेड तवक्कुआत है अगले 5 दिन के लिए अगर देखा जाए तो, जो कि लोएस्ट भी जो है वो शाम को 7 बजे भी हम 34 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपीरियंस कर रहे थे इस्लामाबाद में. फाइनली गर्मी आई थी तो बड़े धूमधड़के से आई थी. गर्मी का सिलसिला दोबारा जो है वो क्या कहते हैं परवान पकड़ेगा या गर्मी दोबारा शिद्दत इख्तियार करेगी 1 हफ्ते बाद. आज से लेके और अगले वेंसडे तक, बुध तक जो है वो मौसमियाती मामलात इस्लामाबाद और उसके गिर्दोनवा में ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद गर्मी शिद्दत अख्तियार करेगी और ये थंडर स्टॉर्म का सिलसिला जो है अगले 4-5 दिन में शायद एक आध दफा और, जिसमें ये झक्कड़ और आंधी और धूल मिट्टी ज्यादा है, बारिश कम है, लेकिन है उसके इम्कानात। और भी शहरों पे मैं नजर डालती हूँ और देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है, लेकिन आज का सवाल और आपके जवाब, आई एम टॉकिंग अबाउट डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रिट्रीट जब कभी कभी आप एक सिचुएशन से हार रहे हो, खो रहे हो उस सिचुएशन को, या उस सिचुएशन में नुकसान ज्यादा हो रहा और जीत जो है वो एज सच इतनी इंपॉर्टेंट ना लग रही हो। तो आपके जवाब जो आए हैं उसमें सबसे पहले रिजवान हारून का जवाब बहुत प्यारा है, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता था। कहते हैं सुन्नत है, सुनना है, तरुज करना। तरुज का मतलब है एक स्टेप बैक लेना, पीछे हटना और दोबारा सोचना, रीथिंक करना चीजों को। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मोहम्मद आसिम कहते हैं, आसिम विद अ डबल ए, एज अ स्ट्रेटजी यस। साद बिन मुश्तबा कहते हैं यस एब्सोल्युटली यस, यू हैव टू समटाइम्स स्टेप बैक, जूम आउट, ट्रू, बिल्कुल पीछे हट जाने की जरूरत होती है ताकि आपको आप नजर डाल सकें और कि हो क्या रहा है। जब आप किसी चीज के बहुत करीब होते हैं तो उस तरह हम समझ रहे होते हैं कि हम करीब जाके जायजा बेहतर ले रहे होते हैं, नहीं, कभी कभी आप बिल्कुल जब पीछे हटते हैं, लंबी सांस गहरी खींचते हैं, उसके बाद आप बेहतर तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं या फिजिकल सेंस में भी नजर डाल सकते हैं चीजों पे, बिकॉज आपकी नजर फिर यू नो दूर से डिस्टेंस से चीजों पे पड़ रही होती है। हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द होल सिचुएशन, रीथिंक, रीस्ट्रेटजाइज, रीअप्रोच द सिचुएशन विद अ डिफरेंट माइंडसेट, मुख्तलिफ सोच के साथ। अब कहते हैं हर बैटल, दूसरी आपने जो बात की बड़ी प्यारी है, कहते हैं हर बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। आपने किसी ना किसी अपने मेंटोर, कॉलीग, यू नो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, पिक योर बैटल्स वाइजली, एवरी बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। अगर आप हर बैटल को जीतना चाहते हैं, उसका मतलब है कि या आप में इनसिक्योरिटी बहुत है या ईगो बहुत है, और ये दोनों एक दूसरे के स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ईगो और इनसिक्योरिटी ना। सो ही सेज ऑल्दो नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग, सो समटाइम्स यू जस्ट रिट्रीट, क्योंकि बैटल ही वर्थ इट नहीं है। एन हावर्ड रोक सेज यस, एक टैक्टिकल रिट्रीट होनी चाहिए टू रिकॉइल एंड स्ट्राइक, पीछे हटना जरूरी है और टैक्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इसीलिए कि आप बेहतर इवैल्यूएट करके दोबारा अटैक कर सकें जिस तरह कोबरा करता है। अवैस खान ने सिर्फ छोटा सा जवाब दिया, उन्होंने कहा यस, यार इतना रोजा रखा है आपने एक्सप्लेनेशन का। मोहम्मद तलहा खान कहते जी बिल्कुल, यू पुश बैक व्हेन यू टेक टाइम एंड रीअरेंज योर स्ट्रेटजी, आप पुश बैक कर सकते हैं और यू कलेक्ट ऑल योर एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, यानी यू बिलीव कि स्ट्रॉन्ग कमबैक जरूरी है और स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए पीछे हटना जरूरी है। बिल्कुल जिस तरह आप क्रिकेट ले लीजिए, जब बहुत ज्यादा खिलाया जाता है किसी भी खिलाड़ी को, या कोई और स्पोर्ट भी ले लें, लेकिन क्रिकेट खास तौर पर ले लेते हैं बिकॉज इट्स क्लोज टू पाकिस्तानीज एंड our lives pretty much revolve around it. उसमें हम कहते हैं ना रेस्ट देने की जरूरत है फलाने प्लेयर को, क्या मतलब होता है उसका, दैट डजंट मीन वो फिजिकली अनफिट है, दैट मीन्स के फिट से फिट इंसान को भी जिस्मानी और जज्बाती और जहनी रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप गेम खेल रहे होते हैं उसमें सिर्फ आप टेक्निक थोड़ी यूज कर रहे होते हैं, और अगर टेक्निक यूज कर रहे होते हैं वो टेक्निक सिर्फ फिजियोलॉजिकल थोड़ी होती है, वो मेंटल टेक्निक भी होती है, राइट? तो दिमाग इंसान का जो मशीन की तरह चलता है, लेकिन मशीन को भी ऑयलिंग की जरूरत होती है ना, रेस्ट देने की जरूरत होती है, वरना मशीन क्या होती है, फट जाती है, बर्न आउट हो जाता है। कपल मोर आंसर्स शामिल करती हूँ इसके बाद, स्टे ट्यून्ड। इंटरेस्टिंग नेम्स ऑफ सॉन्ग्स जो मेरे अभी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, एक है काली रात, अच्छा, बट द नेम ऑफ द बैंड इज फर्स्ट थॉट, दूसरा है मेरा माहिया बाय उमर मलिक सिकंदर खान, इज दिस वन पर्सन और टू मैन, तीसरा इज शेप चेंज्ड बाय काका, वाज़न्ट काका अ फुटबॉल प्लेयर, और इज दिस काका जो हम कहते हैं ना ओए काका इथे इथे आओ, या पश्तो में भी एक्चुअली पश्तो में काका कहते हैं ना, काका इधर आइए जरा, क्या बोलते हैं पश्तो में, एक तो संगे बोलते हैं, व्हाट्स दैट वर्ड, इधर आओ को क्या कहते हैं, मैं अभी सोच के बताती हूँ, आई नो फ्यू वर्ड्स बट एनी हाउ, सो या इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स दैट आई आल्सो हैव। आज के सवाल के हवाले से ज्यादातर जवाब मैंने शामिल कर लिए थे। AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कहते हैं डेफिनेटली वॉर इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स, यानी कोई भी जंग जो होती है वो आगे और पीछे हटने का नाम ही होता है। कहते हैं व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटेंडेड टू गो ऑन एन एक्सपेडिशन, जब वो जाने सोचते थे, तो वो हमेशा प्रटेंड करते थे कि वो कहीं और जा रहे हैं, और फिर कहते थे वॉर इज डिसेप्शन, इट्स ऑलवेज टू स्टैंड डाउन एंड लेट द स्टॉर्म पास. डिसेप्शन इन द सेंस कि आपको कभी कभी, नॉट कि आप किसी को धोखा गलत नीयत से देना चाह रहे होते हैं, बट आप दिखा रहे होते हैं कि आप एक रुख में जा रहे हैं जबकि आपको दूसरे रुख में जाना होता है, ताकि आप सिचुएशन को के ऊपर जो है वो नॉट हावी हो सके बट उसको कंट्रोल कर सकें, उस बेहतर नतीजे जो है वो सामने आ सके. आपने रेफरेंस एक दिया है, और चूंकि आपने द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ यू नो ऑल मैनकाइंड का दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है कि जब कोई भी चीज़ किसी भी मजहब से, और अगर ख़ास तौर पे अगर दीन इस्लाम से रेफर की जाए, तो कोशिश किया करें कि उस रेफरेंस को स्पेसिफिकली बता दिया करें कहाँ से है. ठीक है, कि मतलब वेदर इट्स फ्रॉम यू नो सही बुखारी, और वेदर इट इज़, you know what I'm trying to say, कहीं से भी अगर आप reference देते हैं, किस आयत की reference में, किस situation की reference में, क्योंकि हम जब generically बात करते हैं, even अगर सही बात होती है, तो वो थोड़ी सी misinformation जो है वो मिल जाती है. So, एक तो thank you to everybody who send their answers coming in, and the reason why I have put this question forward today is just to motivate you people, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से एनर्जीज को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई मैं करने की जरूरत मतलब महसूस कर रही हूँ, और आप लोगों को इनकरेज भी कर रही हूँ कि अपनी एनर्जी को अपनी तरफ डाइग्रेस मत होने दें, डाइवर्सिफाई करें. डाइवर्सिफाई यानी कि अगर आपकी ज्यादातर एनर्जी काम की तरफ लगती थी, तो उसको आप आधा आधा कर दें, मतलब डिवाइड कर दें उसको, थोड़ी सी और एनर्जी फैमिली की तरफ, थोड़ी सी और एनर्जी अपनी तरफ, थोड़ी सी और एनर्जी रेस्ट की तरफ, और बाकी काम की तरफ. वजह, काम में इंसान अपना ध्यान बांट सकता है, लेकिन जब किसी की भी मुल्क के या कम्युनिटी के या इदारे के हालात ख़राब होते हैं, और आप काम ही की तरफ सारी तवज्जो और सारी एनर्जी डालते हैं, तो इसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ अ बर्नआउट. ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तैयारी, ठीक है, जो कि अच्छे सेंस में नहीं होती है. जिस तरह मेरी अम्मी के साथ जो अभी हुआ था, वो था ऑनसेट ऑफ अ स्ट्रोक. ऑनसेट यानी कि वो तमाम चीज़ें वो तमाम चीजें जो के तमाम इशारे या तमाम इंडिकेशंस जो के अगर यू नो मुकम्मल तौर पे हो जाएं, तो वो एक स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, एक्सेट्रा. तो उसी तरह ऑनसेट ऑफ अ बर्नआउट का मतलब होता है वो तमाम चीजें आप करना शुरू, आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएंगी जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे, जो कि आपको नहीं उस वक्त फील हो रहा होगा, बिकॉज आपका दिमाग इस तरह चल रहा होगा कि बस मुझे लगे रहना है, मुझे डटे रहना है, मुझे गिरना नहीं है, यू नो इट्स ओके, आई हैव टू फोकस ऑन माय वर्क एंड यू नो आगे कमाना है और आगे बचाना है. ठीक है, बट मैं ये तजवीज़ नहीं आपको दूंगी. आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपनी एनर्जीज को. डाइवर्सिफाई क्या होता है, अगर आप फर्ज कीजिए कि 9 से 10 घंटा सर्व करते हैं काम पे, 9 से 10 घंटा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 8 घंटे की नौकरी कम लोगों की होती है, और रोड जो ट्रैवल टाइम होता है वो वैसे ही ऐड ऑन हो जाता है, और कराची जैसे शहर में तो ज्यादा ही ऐड ऑन हो जाता है. तो समझे कि कम से कम 10 घंटे यूर आउट ऑफ द हाउस अगर आपकी पूरी शिफ्ट की नौकरी है, राइट. अगर आपकी वक्त उतना सर्फ हो रहा है कम से कम, तो दिमाग और जिस्म को जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीटली उसमें महव करें. और अगर यू डोंट हैव द काइंड ऑफ इदारा या काम की नौत आपकी ऐसी नहीं कि उसमें आप बीच में उस तरह की ब्रेक्स ले सकें या ब्रेक्स को ज्यादा एक्सटेंड कर सकें आजकल, तो उसके बाद अगर आप कोई काम करते थे, तो कुछ दिनों के लिए ये कीजिए कि ना एक्स्ट्रा कुछ कीजिए, वरना आप अपने आप को बर्नआउट कर देंगे. हमें नहीं, कुछ लोगों को तो बहुत जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, उसमें मेरे वालदैन की एज ग्रुप बहुत यू नो ऑब्वियस एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि मुल्क में जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, बिकॉज उन्होंने अपने अपनी आंखों के सामने यहाँ पाकिस्तान बनते हुए देखा है, या पाकिस्तान बनने के बाद की उनकी पैदाइश है, कुछ अरसे बाद ही, they've seen the country go through so much. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, जो कि चूंकि उनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं, या यू नो उनकी काम की नौयत ऐसी है, या जिंदगी का पैटर्न ऐसा है कि उनको वो इफेक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है बैठ के इन चीज़ों के बारे में यू नो अपसेट होने का, डिस्कशंस करने का. तो वो सबकॉन्शियस माइंड इसको कहते हैं, यानी कि दिमाग के पिछले हिस्से में ये उसकी उसके उसका जो स्ट्रेस होता है वो बैठना शुरू हो जाता है. तो अगर आप वक्त 8 घंटा नहीं सर्व कर सकते, आप 5 घंटा सर्व करते हैं सोने के लिए, कोशिश करें आधा पौना घंटा और निकाल लें. वॉक करने का, एक्सरसाइज वर्जिश करने का टाइम नहीं था, तो लाजमी आजकल कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल लें, 10-15 मिनट ही सही, क्योंकि फोन इस्तेमाल करने का और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का वक्त अगर कोई निकाल सकता है अपने आप का ध्यान बटाने के लिए, तो ध्यान बटाना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा. डिस्ट्रैक्शन विल नॉट हेल्प यू. जब इतनी सिवियर सिचुएशन हो जाती है, अगेन मैं अपनी अम्मी की मिसाल दूंगी, दैट्स व्हाट शी डिड, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर 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 करके, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा पेन था और इतने अंडरलाइंग इश्यूज थे जिनमें से बहुत सारे ट्रीट हो रहे थे, लेकिन चूंकि वो पेन का एक परमानेंट सोल्यूशन निकल नहीं रहा था और काफी हद तक वो कुछ चीजें कर पा नहीं रही थी, उसकी वजह से उन्होंने किया 1-1.5 साल अपनी उसमें जिस मर्जी कहूं, जिद कहूं, जो भी कहूं, एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने की भी, सो आई विल गिव अ क्रेडिट फॉर दैट. एंड देन उनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट शट डाउन मोड में चली गई, बस हो जाती है, आपको लग रहा होता है आपने ध्यान बांट लिया. इससे बढ़ के मैं और कोई आपको एक स्ट्रांग मिसाल नहीं दे सकती हूँ, और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर एज एंड इट्स नॉट बिकॉज कोई बहुत सारी बीमारियां, वो जो चीजें ज्यादातर वालदेन को, जिससे मैं आजकल बात करती हूँ, जिससे भी उनके बुजुर्ग जो हैं उनको या डायबिटीज है या हार्ट का इशू है या ब्लड प्रेशर है या गोड़ों का दर्द है या कमर की तकलीफ है या शियाटिक पेन्स है या जनरली वीक हो गए हैं या कोविड अगर हुआ था तो उसके बाद उनकी बॉडीली फंक्शंस डिफरेंट है, ये ज्यादातर हर दूसरे घर की कहानी है, राइट. तो अम्मी का भी इसी तरह का सिचुएशन है, सिर्फ थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो चुका है, बट उनका एक ऐसा इशू था जो कि कॉन्स्टेंटली उनको बहुत ज्यादा, उनको बॉडी को स्ट्रेस के स्टेट में डाल रहा था, जो ऐसा भी नहीं कि वो छुपा रही थी, लेकिन अपना ध्यान बांटने के लिए वो फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही थी, वो ट्रैवल जितना कम उनको करना चाहिए था उतना ज्यादा कर रही थी. अम्मी ने पिछले 1.5 साल में 2 इंटरनेशनल और 3 लोकल ट्रैवल्स किए, उनकी बॉडी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इस चीज के लिए, क्योंकि वो ध्यान बांटना चाह रही थी. So anyway, it's a little difficult talking about it. Oh, she did what she thought would help, but it has not helped, right? कभी कभी हम इतने शोर होते हैं कि हमारे लिए ये चीज सेंसिबल है, लेकिन नहीं होती. तो उसी तरह आप एक तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ज्यादा सर्व कीजिए अपना ख्याल रखने में, नॉट ध्यान बांटने में. ख्याल रखने, हम कहते हैं ना अपने ख्याल रखने के लिए ध्यान बांट रहे, नहीं, हम अकलमंद लोग हैं यार. ध्यान बांटने की आइसक्रीम थोड़ी, आइसक्रीम खाली मुंह ठीक हो गया ये ध्यान बांटना होता है. ख्याल रखने का मतलब होता है कि वर्जिश करें, मेडिटेट करें, थोड़ी सी नींद को अपने ऑर्डर में लेके आए, अपने घर वालों के साथ जेन्युइन वक्त गुजारे, नॉट बच्चों को कहना होमवर्क कर लो और मियां को कहना ग्रोसरी ले आओ, जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ताकि जो भी मुल्क में हो रहा है, मैं रोज आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जो भी हो रहा है उसके लिए हमें भी कंट्रीब्यूट करना है, पॉजिटिव एनर्जी और नेक नियति से, दयानदारी से काम करके हम करते रहेंगे, अच्छा वक्त आएगा. जहां तक आज के सवाल का है, और जो मैं आप लोगों को मतलब ऑब्वियस सा, थोड़ा सा ऑब्वियस सा रीजन था रिट्रीट करने की बात, तो रिट्रीट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रही हूं, उस तरफ भी अप्लाई होता है. खैर, ये आप अपनी इंटरनल जंग जो आप फील कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो रिट्रीट आप कैसे करेंगे, अपना ख्याल रख के. अपना ख्याल रखेंगे तो आइडियाज आएंगे, आइडियाज आएंगे तो आप बेहतर चीजों को डील कर पाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स टाइम फॉर मी टू गो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा.